ओम शांति। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी विराजमान है। हम रूहानियत के इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। चूंकि मम्मा बाबा दादियों का मुंबई प्रायः जाना होता था आरंभ के दिनों में, इसलिए दीदी का ये सौभाग्य रहा कि मुंबई रहते ही सभी का सानिध्य मिला। न सिर्फ सानिध्य मिला, लेकिन आपका अलौकिक जन्म खुद ब्रह्मा बाबा के गोद में हुआ और उसके बाद तो आप लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए। बाबा को आपसे बहुत अपेक्षाएं रही, लेकिन जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और आपने अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा अप्रैल मई में पूरी की। और इसलिए जैसे ही एग्जाम पूरी हुई, रिजल्ट का इंतजार किए बगैर आप सीधा मधुबन पहुंच गए और यहाँ पर जो पहली ट्रेनिंग चली कन्याओं को टीचर बनाने की, उसमें आपने भाग लिया और एक राजयोगा टीचर के रूप में तैयार हुए। बाबा ने दादियों ने आपको आरंभ में विविध स्थानों पर सेवार्थ भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर 69 से लेकर 76 तक आपने बाबा की सेवाएं की। बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और बाबा के छुपे हुए लालों को बाबा के करीब लाया। और 1976 में, ये तो हर वर्ष आते रहे, लेकिन 1976 में जब आए तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही थी। और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, दादियों ने आपको एक सुंदर ऑफर दिया मधुबन निवासी बनने का, और आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से आज दिन तक इस धरनी पर रहकर आप देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का संदेश दिया है, बाबा के लाल निकाले हैं। और वर्तमान में हम कहेंगे दीदी राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, पांडव भवन की भर्तियों के कोऑर्डिनेटर हैं और विदेशियों के भी जो यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं उनके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ साथ आप इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं। बाबा मिलन के दिन कई बार डायमंड हॉल में दीदी को लोग नहीं देखते हैं तो प्रश्न करते हैं, दीदी बाबा मिलन करने नहीं आते हैं क्या? कैसे नहीं आएंगे बाबा मिलन करने? लेकिन दीदी ट्रांसलेशन केबिन में बैठकर ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं कि जिस ट्रांसलेशन को सुनकर फिर अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। और इस तरीके से पूरे विश्व में जो बाबा के बच्चे हैं सबको बाबा की मुरली का लाभ मिलता है। और हमेशा हम देखते हैं दीदी के जीवन से त्रिवेणी सरिता गुणों की बहती रहती है, नम्रता, मधुरता और सहनशीलता। बहुत ही प्रतिभावान, जो मम्मा से, बाबा से, दादियों से पालना ली है उसी पालना का रिटर्न हम देखते हैं आप सबको देते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सबको लगता है दीदी तो हमारी अपनी है। तो ऐसी हमारी अपनी दीदी से, जिसको बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिए कि आप हर की पौड़ी की गंगा है और आपके जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती सदा विराजमान है। तो ऐसी हंसवाहिनी वीणावादिनी सरस्वती के वरदान से, जिनको बाबा ने श्रृंगारा है, आज हम सुनेंगे इस भक्ति का लक्ष्य और उद्देश्य विस्तार से हम समझेंगे। आदरणीय दीदी जी, लेकिन इससे पहले कि दीदी शुरू करें, आप सभी का भी परिचय हम दीदी को देंगे। जो भाई बहने 1 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, बाबा के भी हाथ खड़ा करें। 1 से 5 वर्ष के बच्चे, बहुत स्वागत है आपका बाबा के घर में। जो 5 से 10 वर्ष के बच्चे हैं, आपका भी स्वागत है। जो 10 से 15 वर्ष के बच्चे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो 15 से 20 वर्ष के बच्चे हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और जो 20 वर्ष से ऊपर है, वे बहुत बहुत स्वागत है। और जो खास हमारी टीचर बहनें आई हैं, वे हाथ खड़ा करें। आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। इतनी मेहनत करके आप इतने भाई बहनों को तैयार करके लाते हैं। विशेष राधा दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे भाई बहनें जो लखनऊ या उसके कनेक्शन वाले तो आए ही हैं, उसी के नाम पे भट्टी है, लेकिन भारत के किसी किसी कोने के लालों को ये इस भट्टी में आने की लॉटरी मिली है, ऐसे कोई भाई बहने हैं इसमें बैठे कि जो लखनऊ कनेक्शन में नहीं है लेकिन भट्टी में बैठने का चांस मिला है? कौन कहाँ से है, कहाँ से हैं आप लोग? अहमदाबाद। और ये कहाँ से है? लखनऊ से तो है ही ना। चलो, तो जो पूरे भारत भर से आए हैं, सभी का इस भट्टी में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुनते हैं दीदी से
आपका भी परिचय।
मेरा परिचय आपने आने में देरी की तो मुझसे निकलवा लिया इन्होंने। तो अभी सुनते हैं दीदी से।
आते आते भी कितने लोग मिलने आए हैं। एक 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 मिनट भी कहीं खड़े रहो तो। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व वरिष्ठ भाई बहनें, मधुबन निवासी सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत दूर से आप सभी आए हैं, लेकिन एक ही लगन के साथ कि हम पांडव भवन मधुबन में भट्टी करने जा रहे हैं। तो मधुबन तो है ही तपस्या स्थल, हम मधुबन तपोभूमि कहते हैं, वरदान भूमि भी कहते हैं, परिवर्तन भूमि भी कहते हैं। यहाँ जो भी आत्माएं आती है अवश्य परिवर्तित होकर जाती है, और परिवर्तन के साथ साथ बहुत ऊंचा लक्ष्य भी लेकर जाती है। कई लोग पूछते हैं ना, आपका लक्ष्य क्या है, तो उनको सहज स्वभाव से तो यही कह देते हैं कि यहाँ हम आते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। लेकिन मनुष्य से देवता बनने के लिए ये तो बता दिया, पर उसके बीच में कितने और भी तो लक्ष्य है ना। सीधा ही तो देवता नहीं बनेंगे, क्योंकि कहाँ कलयुगी मनुष्य जो शूद्र समान है, विकारी है, तमो प्रधान है, भ्रष्टाचारी है, बाबा क्या क्या कहते रहते हैं। हम सब थे और क्या से क्या बाबा ने बना दिया। तो मनुष्य से देवता बनना माना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उसके बीच में कई और माइलस्टोन्स हैं। जैसे किसी उद्देश्य तक पहुंचना है, किसी स्थान पर पहुंचना है, तो रास्ते पर जाते हैं तो माइलस्टोन्स आते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी कितना कितना कितने कितना माइलेज या किलोमीटर्स और है। और जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते जाते हैं, लगता है कि बस अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। तो पहले तो हम कलयुगी मनुष्य थे, शूद्र थे, और जैसे ही बाबा का परिचय मिला, एक नया जीवन हमें मिला, दिव्य बुद्धि बाबा द्वारा मिली, तो सबसे पहला परिवर्तन क्या लाया हमने अपने में। मनुष्य तो थे लेकिन शूद्र से ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए, जिसको कल की मुरली अनुसार तो हम कहेंगे ब्रह्मा की संकल्प वंशावली बन गए। क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा ने आप सब बच्चों का आह्वान किया था, क्योंकि बाबा साकार में पालना तो लेने वाले तो थोड़े ही थे, लेकिन बाबा की अव्यक्त होने के बाद कितने बच्चों ने जन्म लिया है। लेकिन बाबा ने साकार में ही आपका आह्वान कर लिया था कि बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, मकान बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो बाबा की तो दूरदृष्टि साकार में ही इतनी थी, जो बाबा ने ये सब दृश्य देख लिए थे। आपका माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी आदि आदि, मानो जो भी बाबा के महावाक्य है साकार में बाबा ने कहे, वो सब प्रैक्टिकल में अभी अनुभव हो रहे हैं। तो इसीलिए पहले तो हमने अलौकिक जन्म लिया, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला या सौगात मिली, बर्थडे गिफ्ट मिली, और हम ब्राह्मण कहलाए। तो मुख संतान कहो या संकल्प संतान कहो, क्योंकि संकल्प तो आवाज से भी फास्ट गति का होता है, तो इसीलिए बाबा की संकल्प की आप सभी संतान हो। तो ब्राह्मण बने, तो फिर ब्राह्मणों को लक्ष्य क्या मिला कि अभी हम सबको संपन्न बन फरिश्ता बनना है। पर संपन्न बनने से भी पहले क्या लक्ष्य मिला कि बाप समान बनना है। पर बाप समान होने लिए क्या लक्ष्य मिला कि कर्मातीत बनना है। तो ब्राह्मण तो बने, मुख संतान तो बने, लेकिन सिर पर पापों का बोझा तो बहुत है, और केवल इस जन्म का ही नहीं 63 जन्मों का है। और बाबा ने यही कह दिया, बच्चे ये सारे हिसाब किताब यही चुक तो करने हैं। इसके दो तरीके हैं चुक तो करने के, या तो योग बल या तो सजा बल। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा पसंद करते हो। योग बल है प्यार का बल, प्यार से किसको बदलना, और दूसरा है सजा देकर बदलना। तो बच्चे क्या स्वीकार करेंगे, प्यार से बदले या सजा खाकर बदले? प्यार से। तो प्यार का तरीका कौन सा है, जो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो तो 63 जन्मों के पाप वो तो पता ही नहीं, लेकिन इस जन्म के तो पाप हम सबको याद होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये इतना बोझा है हमारे सिर पर, वो हमें यही चुकतु करना है, तब तो कर्मातीत बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर याद में रहो। निरंतर याद में रहने के लिए हमें अंदर में ये धारणा हो कि हम है ही उनके, सब संबंध हमारे उनके साथ हैं, तो उनकी निरंतर याद रहेगी। नहीं तो लौकिक में तो कितने संबंध हैं, तो कितनी हमारी याद बिखर जाती है। अभी बाबा कहते बस एक से ही सब संबंध जोड़ो, तब निरंतर याद रहेगी। तो जब ये हम लक्ष्य रखते हैं बुद्धि में, तब सहज ही हम कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। और कैसे पता चलता है कि हम कर्मातीत अवस्था को पाते जा रहे हैं, नजदीक है उनके, जब हम इतने न्यारे प्यारे बनते हैं। पहले तो हम भोगी थे, इंद्रियों के वश थे, लेकिन जैसे ही बाबा का परिचय मिला, खुद का परिचय मिला, लक्ष्य का पता चला, तो हम ये देह भान से परे होते गए। देही अभिमानी बन करके यही लक्ष्य रखा कि अभी तो अशरीर ही बनना है, पहले तो देही अभिमानी बनना पड़े। देही अभिमानी पहली स्टेज है, मैं आत्मा देह द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, करनहार मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा कर रही हूँ। फिर जैसे हम देही अभिमानी बनते जाते हैं, तो फिर दूसरी स्टेज आती है कि विदेही बनना है। देह में रहते विदेही, मेरा कुछ भी नहीं है, ये देह तो मेरी नहीं है, लेकिन बाकी भी व्यक्ति वस्तु वैभव वो भी मेरे नहीं है। तो वो भी मेरे नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनसे भी बुद्धि हटती जाती है, क्योंकि मेरा है तब वो हो जाता है। ये सब यहाँ के है ही साथी है, और यहाँ के साथी होने के कारण हाँ यही रह जाएंगे। एक बहन अभी बता रही थी, कहा मैं बहुत बंधन में हूँ। तो मैंने कहा कैसे आ गई फिर, इतना बंधन था आपको? तो कहा मैंने तो अपने पिताजी, मुझे छुट्टी नहीं देते थे, तो मैंने तो अपने पिताजी को कह दिया कि देखो आप तो मेरे पिता केवल इस जन्म के हो। सीधा कह दिया पिता को, आप तो मेरे पिता केवल इस जन्म के हो, न पिछले जन्म के थे न आगे के जन्म के होंगे, पर वो मेरा पिता जिसके पास मुझे जाना है, वो तो मेरा हर जन्म का पिता है, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही है, कुछ भी कर दो, हर हालत में मुझे जाना है। वो पिता मुझे बुला रहा है, आप मैं मर जाऊंगी तो बस शमशान तक ही आप आएंगे, आप आगे थोड़ी आएंगे। याद कह दिया उसको, पर वो तो हमको साथ ले जाएगा, तो उस पिता के पास मैं न जाऊं, आप कैसे मना कर सकते हो? तो वो भी इज्जत पर अड़ी रही। अब पिता ने कहा ठीक है जाने दो, तो कहा अगली बार नहीं जाने दूंगा, इस बार भले जाओ। तो कहा अगली बार फिर देख लेंगे, फिर बाबा उस समय और टचिंग करेगा कि क्या बोलो पिता को। तो कहती ऐसे मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, हर बार कुछ न कुछ बात कहती हूँ, फिर पिता कहता जाओ अगली बार नहीं जाना, फिर कुछ। तो ये भी युक्ति अच्छी है, जैसे बाबा माताओं को कहते हैं ना पवित्र रहना है, तो कहो मुझे श्री कृष्ण स्वप्न में आता है और मुझे कहता है कि तुम पवित्र बनो, मेरी दुनिया में आना है तो मेरे जैसा पवित्र बनना पड़ेगा, तो मैं कैसे नहीं बनूंगी, मुझे तो श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है। तो मानो वो त्रिया चरित्र तो होते ही है। तो बाबा भी हम बच्चों को इतनी ऊंची शिक्षा देकर लक्ष्य कितना ऊंचा देते हैं, वो तो एक जन्म का पिता है, वो भी कर्मों अनुसार है, और कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया तो खत्म, न बाप रहा न बेटा रहा, कोई भी नहीं रहा। तो इसीलिए तो फिर सब संबंध एक से जोड़ते हैं, उनकी ही याद रहती है, तो फिर विदेही बन जाते हैं, राजा जनक की तरह विदेही, सब कुछ करते, सब जगह ना सब कुछ संभालते, लेकिन मेरा नहीं है, मोह खत्म। जैसे राजा जनक का दिखाते हैं, इसको कहेंगे एक सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है, देह में है देह में नहीं है, ये पदार्थ सब है और नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे से परे हो गए। और फिर जब विदेही बनते हैं तो फिर बाबा कहते आगे अशरीरी बनते हैं, आत्मा इतनी अशरीरी बन जाए जैसे कि ये देह है ही नहीं, आप मोए मर गई दुनिया, आत्मा देह छोड़ती है तो उसके लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई ना, शरीर खत्म तो दुनिया ही खत्म। तो इसीलिए अशरीरी बन जाते हैं, बाबा की याद में ऐसे मग्न हो जाएं, ये देह तो दिखाई ना दे। तब बाबा कहते जब ऐसे अशरीरी अवस्था होगी तब तुम कर्मातीत बन सकोगे, तब कहेंगे हाँ सब कर्म बंधनों से मुक्त होते जाएंगे और न्यारे और प्यारे होते जाएंगे, क्योंकि मैं मेरापन खत्म हो गया। जहाँ बीच में कोई विघ्न आया बस बाबा बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन जाओ, बालक भी बनो और मालिक भी बनो, पुरुषार्थ में तो मालिक बनना है, परंतु और जो बातें उसमें बालक बन जाओ, बाबा को सौंप दो, बाबा ही जिम्मेदारी ले लेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कोई बहुत बड़ा उसका बहुत सामान ले रहा है, अब कहाँ उठा पाता है वो बच्चा, तो मम्मी को कहेगा डैडी को कहेगा डैडी आप लो पकड़ो। तो पिता कई बार पिता कहता भी है बेटा दो मुझे, लेकिन नहीं मुझे संभालना है, लेकिन जब थक जाता है तो क्या करेगा, पिता को देना ही पड़ेगा ना। तो अभी तो 63 जन्मों के थके हुए तो है ही है, और इसलिए बाबा कहते हैं सारा बोझ मुझे दे दो, भटकना बंद, दुखी होना बंद, रोना बंद, चिंता करना बंद, डरना भी बंद, सब बंद। आजकल तो टेंशन शब्द भी खत्म हो गया, पहले तो कहते थे टेंशन है हाँ, चिंता टेंशन टेंशन, सारा दिन टेंशन कहते थे, छोटे बच्चे भी कहते थे बहुत तनाव है बहुत तनाव है, आजकल वो शब्द भी खत्म होता जा रहा है। और अभी आगे का शब्द क्या है, अफरा तफरी, पैनिक पैनिक पैनिक, अफरा तफरी, टीवी में भी यही शब्द आता है ना, बार अफरा तफरी तो इतने पैनिक में इतने डरे हुए जो बात मत पूछो, हाई क्या होगा हाई क्या होगा हाई क्या होगा, बाबा कहते जो होगा अच्छा ही होगा। तो इसीलिए हम बच्चों के लिए तो अफरा तफरी नहीं है ना, है क्या, इसलिए आज भी बाबा का स्लोगन था ना साक्षी दृष्टा, वरदान था। तो साक्षी दृष्टा ये इतनी ऊंची स्टेज बन जाती है जब अशरीरीपन का अनुभव होता है, और फिर तो अशरीरी हो गए जैसे देह से न्यारे हो गए, तो फिर तो फर्श से हमारा रिश्ता खत्म, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे, तो ब्राह्मण से फरिश्ता, उसके बीच में कर्मातीत अवस्था, और जैसे ब्रह्मा बाबा बने हैं। कल की मुरली सुनी ना बाबा की, अव्यक्त मुरली 18 जनवरी की मुरली थी, ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बने, कैसे संपूर्ण बने संपन्न बने, और कैसे सब कुछ विल कर दिया, अंतिम जो स्थिति थी कैसी न्यारी प्यारी हो गई, सबसे छुट्टी भी ले ली इनडायरेक्टली, कहा कुछ नहीं लेकिन इतना ही कहा अच्छा बच्चे छुट्टी, कभी बाबा छुट्टी नहीं कहते थे, कभी नहीं कहते नमस्ते गुड नाइट, लेकिन उस दिन उस रात नमस्ते गुड नाइट तो किया, लेकिन हॉल के दहलीज पर, वो दरवाजे के दहलीज पर आकर के झुक करके तीन अंतिम शब्द बोले। अच्छा बच्चे, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनना। अच्छा बच्चों से छुट्टी। लेकिन बच्चों ने समझा थोड़ी है कि छुट्टी माना छुट्टी है, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से छुट्टी कहा, ऐसे समझा। और सचमुच अपने कमरे में गए और कैसे पलंग पर बैठ गए, बिल्कुल अशरीरी। वो अंतिम घड़ियां थी और शिव बाबा उनको बुला रहे थे वतन में। बाप समान बन गए बाबा, तो वतन में शिव बाबा बुला रहे थे, अभी मेरे साथी बन जाओ। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप उनको बुला रहा था, अब तुमको ये बनना है, आ जाओ ये बनो संपूर्ण रूप। फिर दादी जी को भी याद किया बाबा ने कि क्योंकि हैंडओवर तो करना है ना सब कुछ, और दादी को संकल्प आया कि मैं जाऊं बाबा के पास, क्योंकि अभी 9 भी नहीं बजे थे, नहीं तो रात की देर हो जाती है, क्योंकि सब 1 घंटा पहले हो गया सब कुछ, खाना भी और क्लास भी सब कुछ, तो 9:15 के बीच में ही थे। तो दादी भी वहाँ पहुँच गई और देखा बाबा बैठे हैं पलंग पर, टांगे नीचे और बिल्कुल आंखें मूंदी हुई, और कैसे एकदम शांत मुद्रा में। और दादी ने जैसे बाबा का हाथ पकड़ लिया और बाबा ने आंखें खोली, बस वो दृष्टि और हाथ, बोला कुछ नहीं, दृष्टि और हाथ, इससे सारी विल दादी जी को कर दी और आत्मा उड़ गई। तो दादी जी को तो कुछ समझ में नहीं आया उस समय, कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि बाबा ऐसे बैठते तो थे ही तो। और अचानक दादी ने देखा कि ये जो हाथ है ना, ये बाबा के ढीले हो गए, आत्मा तोड़ गई, हाथ ढीले हो गए। तो दादी ने जोर से पकड़ा और कहा बाबा बाबा बाबा, बाबा तोड़ गए थे, नहीं तो डॉक्टर को बुलाते कुछ बुलाते, कल मुरली में था ना, किसी को भी कुछ संकल्प ही नहीं आया। हालांकि कुछ समय पहले बाबा को छाती में दर्द तो हुआ होगा, सवेरे से था, पर सब कुछ किया। और बाबा से ये भी पूछा, बाबा डॉक्टर को बुलाएंगे? और बाबा से पूछे बिना कैसे डॉक्टर को बुलाएंगे, और अपने बीके डॉक्टर्स तो कोई थे ही नहीं, अपना ग्लोबल हॉस्पिटल तो था ही नहीं, बाहर का माउंट आबू का डॉक्टर था, उनको ही बुलाते थे कोई भी बात होती थी। तो बाबा ने कहा नहीं, वो सुप्रीम सर्जन अपना काम कर रहा है, ये बाबा ने कहा। तो सुप्रीम सर्जन काम कर रहा है तो उसके बीच में हम कैसे आएंगे, तो इसलिए बाबा बाबा कहा, लेकिन बाबा तो चले गए, नहीं तो डॉक्टर आ जाता तो कुछ करते नहीं, जैसे हार्ट को वो करते हैं सीस और सीगेट करते हैं, कुछ भी नहीं। और वतनवासी हो गए बिगर एक शब्द कहे, दादी को सब हैंडओवर कर दिया। और दादी जी बताते थे, दादी इतनी शक्ति दादी को उस समय अनुभव हुई, किसी को रोने नहीं दिया, किसी को भी रोने नहीं दिया, इतनी शक्ति। और कहाँ, अब सब सेंटरों पर फोन किया दादी ने, और एक ही शब्द का ड्रामा, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, जो भी मुख्य मुख्य सेंटर्स थे वहाँ फोन किया और जल्दी आ जाओ, बाबा बुला रहे, बाबा अव्यक्त हुए। कईयों ने तो समझा तक भी नहीं क्या होगा होता, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 21 जनवरी को कैसे अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि हुई। और दादी जी और दीदी जी को जैसे सिर पर हाथ रख करके कहा कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बैकबोन बनेंगे और ये आगे रहेंगे, सूर्य चंद्रमा ये गुप्त हो जाएंगे और ये सितारे धरती को जगमगाएंगे। बहुत कुछ उस समय जो अव्यक्त बाबा ने 21 जनवरी को कहा, अभी शिव गुप्त होगा और शक्तियां प्रत्यक्ष होगी, ये बाबा ने कहा, और ये शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेगी। तो उस समय वही स्थिति थी और कैसे ये कार्य चला। तो हम तो यही कहते हैं कि बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ तो बाबा की सेवाएं कैसे बढ़ गई। बाबा के होते हुए तो सब गुप्त था, कोई नहीं जानते थे ब्रह्मा कुमारियों को, पर चीटी मार्ग की सेवा बदलकर विहंग मार्ग की सेवा होने लगी। विदेशों में सेवा केंद्र खुलने लगे, बाबा विदेशियों को भी बहुत याद करते थे। तो उसके पहले तो सेंटर थे ही नहीं विदेश में बाबा के होते हुए। बाबा कहते थे विदेश के बच्चे आएंगे भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी। इतना जो बाबा साकार में कहते थे वो महावाक्य धीरे धीरे कैसे समझ में आए कि ये बाबा जो कह रहे हैं कैसे होगा। उस समय तो सोचते थे ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे ही सोचते थे। लेकिन अभी क्या कहेंगे, ऐसे होगा, हाँ ऐसे हो रहा है। तो फिर तो देखो दादी दीजी दादी और दीदी का कितना वंडरफुल पार्ट चला, दो हंसों का जोड़ा, लेकिन दो शरीर परंतु जैसे एक आत्मा होकर के कार्य किया और दिन दुगनी रात चौगनी गति से बाबा की सेवाएं बढ़ी। फिर तो कैसे उसके बाद देखा कैसे दादियां भी सब धीरे धीरे अव्यक्त होती गई और ये ड्रामा धीरे धीरे पता चलता गया कि अभी ये रोल ये रील खत्म हो रहा है। दादी प्रकाशमणि जी दीदी भी गए, फिर दादी प्रकाशमणि गए, लेकिन बाबा कहते थे अभी इनका एडवांस पार्टी में रोल है। एडवांस पार्टी की शुरुआत तो मम्मा से हुई। जब मम्मा अव्यक्त हुए तो सबसे पहले तो यही संकल्प है मम्मा चली गई, क्योंकि यज्ञ में शुरू शुरू में बाबा ने यही कहा था कि साथ रहेंगे साथ ही जाएंगे साथ ही चलेंगे, सब साथ में ही होगा। तो साथ होगा ये शब्द सुनकर के क्या समझ लिया कि कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, हाँ सब ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही चले जाएंगे बस क्या होगा वो तो कुछ पता ही नहीं था। कोई सेवाएं होगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी पता नहीं था। परंतु मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तब बाबा ने ये राज खोला कि अभी एडवांस पार्टी में मम्मा लीडर बनेगी। तो एडवांस पार्टी ये शब्द जो है वो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने कहा। फिर बड़ी माँ भी उसी समय ये पॉइंट निकली। पहले तो मात पिता अलौकिक मात पिता थे, लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब बाबा ने कहा ये बड़ी माँ, वो तो छोटी माँ थी, वो तो पालना हाथ, क्योंकि ये मेल तन है तो इनको माँ कैसे कहेंगे, इसीलिए पालना के लिए इस माँ को मुकरर किया अभी बड़ी माँ तो ये है। तो फिर धीरे धीरे कैसे बुद्धि फिर बाबा की तरफ गई और बाबा ने लास्ट दिनों में अपने से भी कैसे बुद्धि हटवाई, बच्चे ये भी शरीर छोड़ेंगे ये भी जा सकता है, तुमको तो बस एक से ही सब संबंध जोड़ना है। तो जैसे बाबा बुद्धि हटाता गया बाबा, चलो अव्यक्त पाठ हुआ इतना साल तो भी हमको लगा कि हाँ ये चलेगा, लेकिन कब पता चला कि अभी ये पाठ भी खत्म होगा, जब बाबा की जो लास्ट में मुरलियाँ चली 2017 में शायद, तो बाबा की यही मुरली चली थी अभी, वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह 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 वाह, तो वाह वाह ही करते रहो। एक मुरली में तो बाबा ने 25 बार वाह वाह वाह, याद है ना, 25 बार का एक ही मुरली में वाह बाबा वाह। तो उस समय ये संकेत मिल रहा था कि ये पाठ भी पूरा होगा, क्योंकि बाबा कहते कुछ भी हो जाए आपको वाह वाह ही करना है हाय हाय तो मुख से कभी निकलने ही नहीं चाहिए, तो वाह वाह ही करना है। तो फिर देखो कैसे ये अव्यक्त पाठ भी पूरा हुआ। अभी हम क्या महसूस करते हैं कि पढ़ाई तो पूरी हो गई है, बाकी अभी रिवीजन चल रहा है। जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है ना। सिलेबस तो पूरा हो गया हमारा, जो कोर्स कंप्लीट कोर्स है वो तो साकार मुरलियाँ हैं। फिर अव्यक्त मुरलियाँ क्या है, बाबा ने पहली अव्यक्त मुरली में ये भी बताया, कोर्स तो साकार मुरलियाँ हैं पर अव्यक्त मुरलियाँ क्या, ये फोर्स है, कोर्स नहीं, फोर्स, शक्ति भरने के लिए। अभी तक तो हीरे निकल आए साकार मुरलियों से, अभी वो हीरे को पॉलिश कर रहे हैं, तराश रहे हैं। अव्यक्त मुरलियाँ क्या है, जैसे हीरों को तराश कर तराशना, जिससे चमक आती है, किचरा निकल जाता है, खाद निकल जाती है, हीरे चमकने लगते हैं। तो अव्यक्त मुरलियाँ उसके हीरों को चमकाने के लिए है। और फिर अभी वो पार्ट भी पूरा हुआ, अभी बाबा कहते बस रिवाइज करना है। और अभी जो लेटेस्ट में मुरलियाँ अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज भी कर रहे हैं, पर ऐसे ही लगता है कि जैसे नहीं है, भले कोई ज़्यादा समय पहले नहीं चली होगी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं। साकार मुरलियाँ भी ऐसे ही ऐसे लगता है जैसे कि कितनी प्रासंगिक है, अभी के समय की है, आज भी रोज सुनते हैं। अभी देख रहे हैं ना तीसरे विश्व युद्ध की ये तैयारियां हैं, अभी तक युद्ध चल ही रहा है, मान नहीं रहे हैं, अभी तो धमकियां दे रहे हैं, और हम एटम बॉम्ब गिराएंगे, हम बॉम्ब गिराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, धमकियां ही दे रहे हैं, किसी कोई किसी की सुनता नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। आज ही भारत न्यूज़ आई कि वहाँ से जो यूक्रेन से हमको पाम ऑयल मिलता था, तेल मिलता है, मतलब अभी तो जैसे तबाह हो गया, तो अभी इतना महंगा हो जाएगा, और भी तेल महंगा हो जाएगा, खाने का तेल भी महंगा हो जाएगा, ये सब और महंगे होते जाएंगे, फिर आप बताओ क्या होगा। हम और अगर बॉम्ब गिराया, फिर जो रशिया से अलग हुए देश वो भी अभी खतरे में है, क्योंकि वो तो चाहता है वापस ले लूँ सब, है ना। कौरवों पांडवों की क्या लड़ाई लगी, एक सुई की नोक जितनी भी नहीं देंगे बस। और गुस्सा, गुस्सा तो चरम तक पहुंचा हुआ है गुस्सा, तो इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति तो होना ही है ना। और बाबा तो बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हाँ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अब घर जाना है। बड़ी दीदी की तो यही रट थी, बड़ी दीदी मधुबन में दादी या दीदी थे, तो जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बातें वो सब दीदी देखती थी, और दादी जी तो बाहर का, बाहर की सेवाएं आदि आदि करती थी, पर घर की बातें सब दीदी जी देखते थे। तो दीदी के पास कोई गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम कहाँ हुई, कहाँ पर कुछ तो मैं कुछ भी हुआ मानो, तो दीदी के पास जाते थे, तो दीदी सुनते हुए नहीं सुनती थी, दीदी कहती थी छोड़ो अब घर जाना है, अब घर जाना है, घर जाना है, ऐसी रट लगी हुई थी। उसके बाद ही वो गीत बना, कौन सा, अब घर जाना, अब घर चलना है ना, जब किसी का शरीर छूटता है तो वो गीत बजाते हैं, अब घर चलना है, वो दीदी के दे त्याग के बाद वो गीत बना दीदी का। तो देखो, तो इसीलिए अब तो वो प्रैक्टिकल में जो बाबा ने मुरलियों में कहा वो सब प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं। तो बेहद का वैराग्य तो आना ही चाहिए, हाँ आ गया है या अभी आना चाहिए, आ गया है या आना चाहिए, क्या कहेंगे, आ गया है, बिल्कुल आ गया है। बेहद का वैराग्य आना यही सिद्ध करता है कि हम कर्मातीत अवस्था के निकट हैं। हम बाबा को देखते थे, दादियों को भी देखते थे, दादियों के आगे गए तो दादी को ये सुनाओ ये सुनाओ, पर दादी जी के जब सामने जाते थे क्या सुनाएं, वो छोटी छोटी बातें क्या सुनाएं, हाँ दादी की स्थिति इतनी ऊंची और अब ये छोटी छोटी बातें जाके दादी को सुनाएं। बाबा के साथ भी ऐसा ही था, लास्ट दिनों में तो बाबा इतना उपराम हो गए, इतना उपराम हो गए। एक मिसाल मनोहर दादी सुनाती थी कि एक बहन ने बहुत अच्छी सेवा की होगी, तो वो सेवा करके फिर मधुबन में आई बाबा को समाचार देने लिए, तो बाबा से मिल गई थी, झोपड़ी में, जैसे बाबा दिन में मिलते थे ऐसे ही कैजुअली मिलते, तो बहुत बड़ाई करने लगी, बाबा ये सेवा हुई, फलाने आए, ये आए, वो आए, बहुत कुछ कहने लगी। और बाबा तो उपराम, इतना उपराम, अब बाबा उसका मुंह कैसे बंद करें, वो देख ही नहीं रही है बाबा को, वो तो अपनी बातों में ही मौज, वो अपनी आप बातें सुना रही थी। तो बाबा ने उसको कैसे रोका, कितना रॉयल्टी से बाबा ने उसका उसको कहा, बच्ची आपने ये सब बातें पत्र में लिखी है ना, क्योंकि पत्र भी लिखा उसने और फिर खुद बताने भी आ गई, तो आप बच्ची आपने ये पत्र में लिखा था ना। हाँ बाबा मैंने लिखा था, मैंने आपको सब डिटेल भेजा था, ये किया था वो किया था। तो बाबा शांत होकर कहा, अच्छा बच्ची बाबा जानते हैं, माना अभी आगे मत सुनाओ अभी आगे मत बोलो, लेकिन ऐसे थोड़ी किसको इंसल्ट थोड़ी करेंगे, अभी आगे मत बोलो, बस 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 बहुत सुन लिया नहीं तो हम लोग तो कुछ भी सुना लेंगे ना ऐसे। हाँ बाबा जानते हैं, और बाबा जानते हैं, और फिर देखो बाबा प्रणाम हो गए। तो उसको समझ आए कि मैं बाबा के सामने क्या बोल रही हूँ, क्या संसारी बातें बोल रही हूँ, और वहाँ गए वहाँ गए, ये किया वो किया, वो आया वो आया, इतना बड़ा आदमी, आदि आदि, बाबा तो उपराम, बिल्कुल उपराम। तो वही अनुभव हम दादियों से भी क्या उसी को कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो इसीलिए दादी जानकी को हमने देखा, दादी जानकी जी यूनाइटेड नेशंस में भाषण करके आई थी, 3 मिनट का ही भाषण था पर इंग्लिश में भाषण किया दादी ने, उसको लिखत दी गई दादी को और वो उसने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस के वो जो असेंबली होती है उसमें, और दादी ने बड़े नशे से पढ़ा, और तो ये इतना उसकी वाहवाह हुई, कहाँ अनपढ़ और कहाँ वो इंग्लिश सीख गई दादी जानकी, और वो अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के आगे पढ़ा। तो जब मधुबन में वापस आई तो हमने दादी को ऐसे कैजुअली कहा, दादी आपने यूएन में इतना अच्छा भाषण किया, क्योंकि देखा हम लोगों ने। तो दादी कहती हाँ हो गया हो गया। तो मैंने कहा दादी थोड़ा समाचार सुनाना ना। दादी कहती मैं तो भूल भी गई मैं तो भूल भी गई, अब कहाँ इतनी बड़ी सेवा, और दादी तो भूल भी गई। दादी कहती मुझे समाचार मजा सुनाना आता नहीं है, सीधा बोल दिया। बाकी ज्ञान योग में तो नंबर वन, समाचार क्या सुनाना, हो गया फुल स्टॉप, ड्रामा खत्म, पूरा हुआ, जो पिछली भी वो घड़ी बीती खत्म, उसको क्या याद करना। दादी जानकी तो ऐसे ही थी, हम कई बार सुनाते, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दादी के सामने, तो दादी तो टाइम पर पहुंच गई, अभी वो जो अखबार वाले थे थोड़ा लेट आ रहे थे, तो दादी तो एक्यूरेट टाइम पर पहुंच गई। तो एक अखबार वाले ने कहा, दादी आप तो बिल्कुल एकदम आ गए एक्यूरेट, तो आप घड़ी तो पहनते नहीं है, तो आपने आप कैसे एक्यूरेट आ गए समय पर। दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, दादी ने कहा मैं एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ, तो घड़ी पहनने की क्या दरकार, लोग तो घड़ी देखते रहते हैं कि टाइम जैसे देखते रहते हैं। तो सचमुच हम देखते थे दादी को, बिल्कुल एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। हाँ ऐसे नहीं बातों बातों में लग गए, दादी तो कभी नहीं करती थी काम की बात, काम की बात कभी भूलती नहीं थी, और जो बेकार बातें उसको दादी को कभी याद नहीं रहती थी। हम लोग क्या करते हैं, जो काम की बातें भूल जाएंगे कि मैं भूल गई अरे ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आप भूल गई, और जो बेकार बातें कितना याद करते हैं, अब कहेंगे मेरे भूल जाओ, कैसे भूलूँ कैसे भूलूँ, अरे कोई काम की नहीं है क्या याद करना। लेकिन तो दादी को जब कहे दादी आपको याद है, दादी कहती है मैं काम की बातें नहीं भूलती हूँ, बाकी बेकार बातों को क्यों याद करना, तो एक सेकंड में भूल जाते हैं। तो सचमुच दादियों से भी कितना सीखा। तो ये कर्मातीत अवस्था के निकट की निशानियां थी। और फिर तो संपन्न संपूर्ण बनना है, तो संपन्न भी बनना है संपूर्ण भी बनना है, दोनों में अंतर क्या है, संपन्न और संपूर्ण में अंतर क्या है। जैसे पूर्णमासी के दिन हम देखते हैं ना रात को फुल चंद्रमा होता है, वो संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपूर्ण माना आकार में संपूर्ण, और संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, फुल। हाँ, जैसे वो कौन सी पूर्णिमा आती है ना, चंद्रमा बहुत नज़दीक होता है, शरद पूर्णिमा कितना नज़दीक होता है और कितनी लाइट होती है उसमें, तो संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो संपन्न मतलब जब हम कहते सर्व गुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, तो गुणों में संपन्न और कलाओं में संपूर्ण, क्योंकि 16 दिन लगते हैं बिल्कुल चंद्र अमावस्या से लेके पूर्णमासी तक 16 दिन, वो 16 दिन में संपूर्ण बन जाता है। नहीं तो कुछ न कुछ फर्क तो है ना, गोलाकार नहीं होता है। तो सर्व गुण संपन्न माना गुणों में संपन्न, कोई भी गुण की कमी नहीं, कोई भी शक्ति की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं। जो बाबा हमको खजाने देते हैं उन खजानों में इतने हम संपन्न हो जाए जो और कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े, न देखने की जरूरत पड़े। जैसे कोई व्यक्ति इतना पेट भरा हुआ है, फिर उसके सामने आप 100 व्यंजन रख दो, वो क्या कहेगा, नहीं बाबा हाँ बहुत टेस्टी भी होगा तो भी नहीं, मना करेगा। इसलिए संपन्न माना इतना संपन्न, इतना संपन्न जो कुछ मार्जिन ही न रहे, जो कहना पड़े कि ये गुण मेरे में नहीं है, ये शक्ति मेरे में नहीं है, या ये ज्ञान की पॉइंट में नहीं समझ सकता हूँ, या भी कोई मार्जिन है, कोई कमजोरी है, कोई कमी है, कोई खामी है, नहीं, इसको कहेंगे संपन्न। संपन्न और संपूर्ण माना अंतर की पवित्रता इतनी श्रेष्ठ हो जो स्वप्न में भी वो पवित्रता भंग न हो, तब कहेंगे संपूर्ण। साकार मुरलियों में तो आता है कि बाबा कहते थे बच्चे चलो मनसा में अगर तूफान आता है कोई बात नहीं, पर कर्म में नहीं होना चाहिए। यही बाबा कहते थे ना, कर्म में नहीं होना चाहिए। और अव्यक्त मुरलियों में कर्म तो क्या, संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए, तो बाबा कहते हैं। तो जब संपन्न और संपूर्ण बने तब बाबा कहते घर चले, नहीं तो सजा खा के जाएंगे। फिर घर जाने के बाद फिर बाबा कहते नई दुनिया में आना है। इसीलिए हर वक्त बाबा कहते एक आंख में मुक्ति या दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, बाकी तो देखते हुए भी नहीं देखो। तो यही लक्ष्य, यही उद्देश्य हम बच्चों को मिला है। कहने में तो सहज है मनुष्य से देवता, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बीच में ये माइलस्टोन्स। चलो अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, फिर मिलते रहेंगे।